कुंजा बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोपाल हे गोपाल हे दामोदर भगवान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा धन्यवाद हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज के इस 21 तारीख के संध्या जागृति में कार्तिक महीने में दामोदर मास में आप सबका स्वागत है। अभी का दो दिन में दीपावली आने वाली है सो सब लोग सोचते हैं फटाका फोड़ना है मिठाई खाना है लेकिन दीपावली का इससे भी आगे जाकर बहुत महत्व है। दीपावली बहुत पवित्र दिन है तो संक्षेप में हम आपको दीपावली के दिन क्या क्या हुआ था वो बताएंगे और उसमें से एक कहानी विस्तार में बताएंगे। सो दीपावली के दिन यानी कि परसों के दिन आज धनतेरस है तो कल के दिन क्या है नरक चतुर्दशी परसों के दिन क्या है अमावस्या तो नरक चतुर्दशी के दिन नरकासुर को भगवान ने मारा था और नरकासुर कौन था नरकासुर भगवान का ही पुत्र था। जब पृथ्वी माता को हिरण्याक्ष ने लात मारकर समुद्र में फेंक दिया था सत्ययुग की बात है तभी भगवान ने ब्रह्मा के नाक से वराह अवतार लिया था और वराह अवतार के रूप में उन्होंने पृथ्वी को सागर के तल से अपने सिंगों पर उठाकर दोबारा अपनी कक्षा में रखा था। उस समय भूमि देवी यानी पृथ्वी यानी भगवान वराह देव इनका संबंध से एक पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था भौम। भौम यानी क्या भूमि का पुत्र भौम। आगे जाकर उसने नरकासुर बाणासुर के साथ में संग किया असुरों का संग किया इसलिए भगवान का पुत्र होने पर भी वो नरकासुर बना भौमासुर बना। उसके दो नाम हैं एक नरकासुर एक भौमासुर। उसने कंस के साथ में दोस्ती बना लिया और वो भौमासुर ने जाकर इंद्र के माता के गहने चुराए कुंडल कवच सब चुराया तो फिर सत्यभामा को साथ लेकर भगवान गए और उन्होंने नरकासुर का वध किया। तो नरकासुर का वध करके उसके जो गहने थे इंद्र के माता के शची माता उसके नाम है उसके गहने लेकर भगवान इंद्रलोक गए। उसका नाम क्या है इंद्रलोक का अमरावती। अमरावती यानी इंद्रलोक का राजधानी वैसा नाम का एक शहर महाराष्ट्र में भी है तो उसका मूल अर्थ यह है कि वो इंद्र की राजधानी है स्वर्गलोक की राजधानी। तो वहाँ पर भगवान गए और भगवान ने ये जो कवच कुंडल थे उसके गहने वो इंद्र की माता को सुपुर्द कर दिए। तो चतुर्दशी के दिन अश्विन शुद्ध चतुर्दशी के दिन को कहते हैं नरक चतुर्दशी क्योंकि इस दिन भगवान ने नरकासुर को मारा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारी रांगोड़े के ऊपर वो कौन सा फल होता है, उसको पाँव से तोड़ते हैं, कारीट को, नरकासुर को मारने के याद के उपलक्ष में हम लोग अपने पैर से इस दुष्ट प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए अपने पैर से उस फल को तोड़ देते हैं। ये कहानी नरक चतुर्दशी की है। फिर दूसरे दिन दीपावली है, लक्ष्मी पूजन। उस दिन प्रभु रामचंद्र रावण पर विजय प्राप्त करके पुष्पक विमान में बैठकर सभी वानर सेनाओं और अपने भाई और बहू के मतलब पत्नी के सहित अयोध्या पहुँचे, और उस दिन उनके स्वागत के लिए सभी अयोध्या वासियों ने दीपक जलाया पूरे अयोध्या में। इसलिए हम भी उस दिन दीपक जलाते हैं। समझ में आया? ये प्रभु रामचंद्र का अयोध्या का आगमन का दिन है, इसलिए दीपावली मनाते हैं। दीप प्रज्वलित करके सब लोग पवित्रता, शुभता, ऑस्पिशियसनेस को पैदा करते हैं। दीप जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, अंधकार को नष्ट करने वाला है, दुख को नष्ट करने वाला है। जब हम घी का दीपक जलाते हैं तो घी का दीपक जलने से वातावरण में शुद्धि उत्पन्न होती है, भूत प्रेत जो पिशाच जो सब भाग जाते हैं। संध्या के समय ये सब भूत प्रेत पिशाच जो है वो आसपास में रहते हैं, इसलिए हमारे संस्कृति में संधि काल के समय दीपक जलाकर आरती करने का रिवाज है। क्योंकि जब संध्या के समय हम भगवान की संध्या आरती करते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो हमारे घर में इन जो प्रवृत्ति है ना, ये पिशाच प्रवृत्ति, भूत प्रेत प्रवृत्ति है, उसका परिणाम हमारे घर पे नहीं होता है। तो वही पवित्रता को निर्माण करने के लिए, शुभ वातावरण, मंगल वातावरण निर्माण करने के लिए अयोध्या वासियों ने सब घरों में दीपक लगाए, द्वार द्वार पे दीपक लगाए, रास्ते पर दीपक लगाए, पूरे नगर में दीपक लगाए, महलों पे दीपक लगाए। प्रभु रामचंद्र को अपना हृदय का प्रेम व्यक्त करने के लिए सभी जनता ने दीपक जलाए कि हम आपको प्रेम करते हैं, हम आपको चाहते हैं, हम आपको आपके विरह में थे, आपको याद कर रहे थे, आप विजयी होकर बहू को लेकर लौट के आ रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो प्रभु का जो प्रेम है वही हमारे जीवन का सार है। प्रभु हैं तो आनंद है, प्रभु नहीं है तो दुख है, प्रभु है तो सब मंगल है, प्रभु नहीं तो सब अमंगल है, प्रभु है तो हम जिंदा हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअली वी आर अलाइव, दिव्य दृष्टि से, आत्मा के दृष्टि से हम जिंदा हैं अगर हमारे जीवन में प्रभु हैं। और अगर हमारे जीवन में प्रभु नहीं है तो हम मनुष्य होकर भी, जिंदा होकर भी शव समान हैं, मुर्दा हैं। ये हमको सबको समझना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन को कीमत तब तक है जब तक हमारे जीवन में प्रभु हैं, और जब हमारे जीवन में प्रभु को हम भूल जाते हैं तो हमारा जीवन जो है वो शून्य बन जाता है। जब तक प्रभु है तो वैल्यू है। जैसे शरीर में जब तक आत्मा है, प्राण है, तब तक जीवन है। जब आत्मा चली जाती है तो ये सुंदर दिखने वाला शरीर जो है वो मुर्दा बन के गिर जाता है। उस तरह से ऐसे कहा गया है कि जैसे मुर्दा समान हो गई थी अयोध्या, तो प्रभु का आगमन हुआ तो जीवन चैतन्य वापस आया। जो जंगल में पांडवों को जब भगवान मिलने गए तो ऐसा वर्णन आता है, व्यासदेव जी वर्णन करते हैं कि मानो जैसे मुर्दे में जान आती है वैसे पांडवों के चेहरे पर रौनक आ गई कि भगवान का दर्शन हुआ। तो ये जीवन का सार है। हम सोचते हैं कि धन आएगा तो सब मंगल हो जाएगा, हाँ समृद्धि आएगी, प्रसिद्धि आएगी, यश आएगा, कीर्ति आएगी तो हमारा जीवन चमक उठेगा। लेकिन जीवन तब चमक उठता है जब जीवन में भगवान होते हैं, जब भगवान का हमारा संबंध होता है, भगवान से हम जुड़ जाते हैं, भगवान से जुड़े रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के भक्तों का संग करते हैं, उनका नाम पुकारते हैं, तो हम उनसे जुड़े रहते हैं। हमारी दीपावली तब सफल हो जाएगी जब हम भगवान की याद में दीपक जलाएंगे। फिर इसी दीपावली के दिन में बहुत सुंदर लीला हुई, वो हम आपको विस्तार में बताने का प्रयास करेंगे। इसी दिन यशोदा माई ने बाल कृष्ण को डोरी से उखल को बांध दिया, ये लीला उसी दिन हुई है। लोग पटाखे फोड़ते हैं, मजा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये दिन आनंद लेने के साथ साथ में भगवान की इस लीलाओं को याद करने का है कि इस दिन में भगवान ने ये सुंदर लीला किया था। फिर बलि प्रतिपदा आती है जो इस साल 24 तारीख को आएगी, है ना। बलि प्रतिपदा के दिन भावबीज नहीं, बलि प्रतिपदा के दिन आपने बलि महाराज की कथा सुनी होगी, महाबली की। महाबली जो थे वो प्रहलाद के पुत्र विरोचन, उसके पुत्र महाबली थे, राक्षस के कुल में जन्मे हुए भगवान के भक्त थे वो, लेकिन राक्षस के कुल में जन्म लेकर उन्होंने राक्षसों के पक्ष में देवताओं पर बहुत भयंकर विजय प्राप्त किया, बहुत घनघोर युद्ध किया और सब देवताओं को परास्त कर दिया, क्योंकि देवताओं ने दुर्वासा मुनि का अपराध किया, उनका सब ऐश्वर्य खत्म हो गया। कैसा है देखो, देवता भगवान के भक्त होते ना, उनको क्यों कमी होनी चाहिए कुछ, लेकिन देवता लोग भी जब संतों का अपमान करते हैं तो उनका भी सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो हुआ क्या कि दुर्वासा मुनि वैकुंठ से आए और वैकुंठ से उन्होंने आते होते, हम लोग ऐसे यात्रा में गए तो वहाँ का प्रसाद लेके आएंगे, वहाँ का जल लेके आएंगे, वहाँ के फूल लेके आएंगे, आपके लिए बटने के लिए लेके आएंगे ना। तो वैसे दुर्वासा मुनि बेचारे वैकुंठ गए थे विष्णु को मिलने के लिए, तो विष्णु की प्रसादी माला जो है महाप्रसादी माला वो लेकर आए और सीधे इंद्रलोक में आए। सोचा इंद्र राजा है देवताओं का, उसको देना चाहिए भगवान की कृपा। तो जब इंद्र को उसने माला दिया तब इंद्र क्या कर रहा था, ऐरावत हाथी पर बैठकर अप्सराओं का डांस देख रहा था। तो इतना मशगूल था वो भोग लेने में, आंखों से भोग ले रहा है, सुंदर औरतों का सुंदर नृत्य देख रहा है हाथी पर बैठकर। तो दुर्वासा मुनि आए हैं और वैकुंठ की कृपा को लाए हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया उसने, ऐसा लिया माला और हाथी को दे दिया, उसको प्रणाम नहीं किया, उसको पहना नहीं, कुछ नहीं किया। हाथी तो हाथी होता है, उसने हाथी ने वो माला लेके पैर पे कुचल दिया, भगवान की माला। तो दुर्वासा मुनि ने कहा अच्छा, देवताओं का राजा बनकर इतना भोग में लिप्त है, भगवान की कृपा की कीमत नहीं करता है, जाओ तुम्हारा सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। साधु का अपराध किया, सब ऐश्वर्य नष्ट हो गया। तुरंत महाबली ने आक्रमण किया और सब देवताओं को परास्त करके साम्राज्य छीन लिया, सब कुछ छीन लिया देवताओं का। तो बल किससे प्राप्त होता है, वर्जिश करने से होता है क्या, धन कमाने से होता है? बल प्राप्त होता है साधुओं की सेवा करने से, भक्तों की सेवा करने से, और भक्तों का अपराध करने से जो भी आपको लगता है आपके पास में है, जो भी आपको लगता है आपकी समृद्धि है, सब नष्ट हो जाती है। दुर्वासा मुनि का सम्मान नहीं किया, उसके ऊपर जाकर विष्णु के प्रसाद का सम्मान नहीं किया, सब नष्ट हो गया। तब होश में आ गया, अरे गड़बड़ कर दिया मैंने। तो महाबली का उसमें क्या शक्ति था, महाबली ने सब ब्राह्मणों का सेवा किया था, खास करके अपने गुरु शुक्राचार्य का बहुत सेवा करके प्रसन्न किया था उसको। तो उसके वजह से महाबली तो तेज पुंज हो गया, तेज से भर गया, और देवता लोग निस्तेज हो गए। तो महाबली को आदेश हुआ कि जाओ आक्रमण करो, तो आक्रमण किया, सब देवताओं को परास्त करके सब हरा दिया उसको। तब जाकर इंद्र को होश आया, भाग भाग के विष्णु के पास गए, महाराज जी भगवान अब माफ करना हमको। भगवान ने कहा अभी यह समय आक्रमण करने का नहीं है, तुम लोग सब निस्तेज हो गए हो, भगवान हमारे हाथ से गलती हो गया, हमने साधु का अपमान किया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं वामन बनकर आता हूँ। वामन बनकर आकर बलि का जो सब कुछ तेज है सब छीन लेता हूँ। तो भगवान ब्राह्मण बनकर आए, छोटे से बालक बनकर आए, तीन पग भूमि मांगा, तीन पग भूमि हाँ बोला, दो पग में पूरा नाप लिया और तीसरे पग में भगवान ने उसके सर पर पांव रखा और उसको सूतल लोक में भेज दिया। अभी सूतल लोक में जब भेज दिया तो लोगों को लगता है कि अरे कितना अपमान किया उनका, सब कुछ छीन तो लिया, भिखारी बनाया और फिर नरक में भेज दिया, ऐसा नहीं है। इतना बड़ा भक्त था वह महाबली, इतना बड़ा भक्त था, इंद्र से भी कई बढ़कर भक्त था। भगवान ने दिखाया क्या कि राक्षस कुल में होने पर आप भक्ति कर सकते हो, जरूरी नहीं कि राक्षस होने के बाद भक्त नहीं कर सकता है। राक्षस कुल में प्रहलाद भी जन्मे हुए थे, वो भगवान की श्रेष्ठ भक्त के रूप में आज भी प्रसिद्ध है। तो भगवान ने बलि के रूप में ये साबित कर दिया कि राक्षस के रूप में आप आओगे कुल में, फिर भी मेरा भजन करके श्रेष्ठ भक्त बन सकते हो। इस तरह से जब महाबली ने, महाबली को भगवान ने भेज दिया, उसके आगे की कहानी बहुत लोगों को पता नहीं है। भगवान ने क्या क्या वरदान दिया महाबली को, महाबली को वरदान दिया कि इंद्र का जो अमरावती है उससे भी अधिक समृद्ध तुम्हारा लोक होगा। सबसे पहले नजर तुम्हारी लोक के ऊपर इंद्र की पड़ेगी। अरे भगवान ने इसको परास्त करके नरक भेज दिया, लेकिन ये तो मेरे से अब अधिक अच्छा लोक दे दिया उसको, तो इंद्र की नजर पड़ेगी तो इंद्र सेना लेकर आक्रमण करेगा, इसलिए ये लो मेरा चक्र, ये चक्र जो है ऐसे लोगों के आक्रमण से आपका रक्षण करेगा, आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं, मेरा चक्र संभाल लेगा, हम आराम से रहो, कोई भी तिरछी नजर से देखेगा तो मेरा चक्र उसकी रक्षा करेगा। देखो, एक तो इंद्र से बढ़कर राज्य दिया, रक्षा के लिए अपना चक्र दे दिया, फिर क्या बोला कि तुम राक्षस हो, तुम्हारे परिवार में सब राक्षस है, पत्नी बच्चे सब कुछ, उनके संग में रहने पर भी तुम्हारे मन में राक्षसी प्रभाव नहीं होगा, तुम वैष्णव बने रहोगे, राक्षस कुल के परिवार के बीच में रहने पर भी तुम्हारे मन पे राक्षसी भावना का प्रभाव नहीं रहेगा। मतलब क्या कर दिया, वैक्सीन दे दिया, वैक्सीन है ना, वैक्सीन का मतलब क्या होता है, आप रोग के एरिया में घूमोगे फिर भी आपको रोग नहीं होगा, तो ऐसा वैक्सीन भगवान ने लगा दिया उसको वरदान देकर कि राक्षसों के कुल में, राक्षसों के बीच में रहने पर भी आपको राक्षसी भावना मतलब भगवान की विद्रोही भावना जो है उसका परिणाम नहीं होगा। और क्या बताया, जितने साल अमरावती जैसा, अमरावती से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का भोग करोगे उतने साल कभी भी भोगते हुए मुझे नहीं भूलोगे। आमतौर पे क्या होता है, इंद्र का क्या हो गया, इंद्र का साम्राज्य जो है अप्सराओं को नित्य देख रहा है, आनंद ले रहा है, भूल गया भगवान को, उसने कहा ये सारा ऐश्वर्य का भोग लेते हुए भी तुम मुझे नहीं भूलोगे, मेरी स्मृति जो है वो बनी रहेगी। और इतने हजारों साल राज्य करने के बाद जब मृत्यु का समय आएगा तो मेरी याद करते करते मेरे वैकुंठ में पहुंच जाओगे। कितने सारे वरदान दिए, और भी बोलते भगवान कि मैं स्वयं तुम्हारे राज्य में द्वारपाल बनकर आऊंगा, डोर कीपर, आपकी रक्षा करने के लिए, मेरा वैकुंठ, मेरी पत्नी, मेरा परिवार छोड़कर तुम अपने परिवार के साथ रहोगे, मैं मेरी पत्नी परिवार, मेरा धाम छोड़कर तुम्हारे दरबार में गेट पर खड़ा रहूंगा। कितने वरदान दिए, किधर इंद्र किधर महाबली, और ऊपर से वरदान दिया कि तुम्हारा पृथ्वी पर राज था तो साल में एक दिन तुम इस प्रतिपदा के दिन पृथ्वी पर आओगे दर्शन करने के लिए कि तुम्हारी प्रजा कैसी है। तो उस दिन बलि महाराज जो है सुतल लोक से पृथ्वी पर आते हैं सबको देखने के लिए, अपनी प्रजा को, तो सब प्रजा जो है हम लोग दीपक जलाकर दिखाते हैं हम बड़े खुश हैं, आप चिंता मत करना, बड़े आपका स्वागत है, आप आ रहे हैं, आपका आप हमें देखने के लिए आ रहे हैं, तो सबके घरों में दीपक जलाकर मंगल करते हैं सब लोग। ये बलि प्रतिपदा की कहानी है। और दूसरा चौथा दिन क्या है, भैया दूज, भाऊबीज। उस दिन का महात्म्य ऐसा है कि जब सूर्यदेव का उषा देवी के साथ में विवाह हुआ तो सूर्यदेव बड़े तेज वाले थे, बड़ा प्रकाश, उषा देवी बेचारी नई नई दुल्हन थी, अपने पति का इतना प्रकाश देकर डर गई वो, जब साथ में गई इनको मिलने के लिए इतना प्रकाश देकर उनकी आंखें एकदम ऐसे बंद हो गई, डर गई बेचारी वो। तो सूर्य ने कहा इस संबंध से जो बालक होगा उससे पूरा विश्व डरेगा, उसका नाम यमराज होगा, क्योंकि तुम मुझे देखकर डर गई थी, तो बच्चा भी होगा उसको देखकर पूरा विश्व जो है सब लोग डरेंगे, उसका नाम यमराज होगा। तो सुषा देवी को दुख हो गया, अरे हमने तो गड़बड़ कर दिया, तो मेरे पति है, डरने का क्या उसके अंदर। दूसरी बार बड़े प्रेम से सेवा करती है, तो कहते हैं इस बार जो कन्या होगी नदी के रूप में होगी, उस नदी के रूप में जो कन्या आएगी उसके जल में जो स्नान करेगा वो पहले वाले पुत्र के भय से मुक्त हो जाएगा, उसका नाम क्या है, यमी, यमी यानी यमुना, यमुना जो है वो सूर्य देवी की पुत्री है, यमराज की बहन है। तो यमराज के भय से यमुना के जल में स्नान करने से मुक्ति मिल जाती है, इसलिए ऐसा लिखा गया है कि यमद्वितीया यानी कि भाऊबीज, इस दिन में जो भाई और बहन हाथ में हाथ पकड़कर जमुना जी में डुबकी लगाते हैं उन्हें वैकुंठ प्राप्त होता है। इस दिन जो केवल बहन के हाथ का भोजन खाता है और जमुना जी में बहन का हाथ पकड़कर स्नान करता है वो भाई और वो बहन दोनों वैकुंठ को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा महात्म्य है। इसलिए वृंदावन में जहाँ जमुना बहती है सब बूढ़े बूढ़े जवान जवान जितने बच्चे बच्चे सब लोग हैं हाथ में हाथ पकड़कर डुबकियाँ लगाते हैं जमुना जी में, और फिर घर लेके जाके भाई भैया को बहन जो है अपने हाथ से भोजन कराती है। कितना बड़ा कल्चर है हमारा, देखो कितना सुंदर कल्चर है। वे लोग आप हाफ पैंट नेक पहन के जीन्स पहन के घूमते हैं, फटाका फोड़ते हैं, रामबाण चलाते हैं आकाश में, कुछ पता नहीं उनको कितना महात्म्य है इसके अंदर, कितना शक्ति है, कितना पावर छुपा हुआ है। सब वेस्टर्न बनने में तले हुए हैं, वेस्टर्न कपड़ा पहनते हैं, वेस्टर्न सोचते हैं, वेस्टर्न मोबाइल यूज़ करते हैं, हाँ वेस्टर्न गाड़ी लेते हैं, सब वेस्टर्न अवजार चाहिए हमको, सब कुछ ब्रांडेड चाहिए फॉरेन का, घड़ी फॉरेन की, जूता फॉरेन का, मोजा फॉरेन का, कपड़ा फॉरेन का, मोबाइल फॉरेन का, गाड़ी फॉरेन की, सब फॉरेन का, और बहुत लोगों को बीवी फॉरेन की चाहिए। हाँ बहुत गर्व करते हैं, गोरी बीवी है मेरी, गाँव अमेरिका से लाई है। अपना जो है ना अपना वो सब खो गए हम लोग, सब कम से कम कपड़ा पहनते हैं, ऊपर ऊपर कपड़ा आ रहा है हमारा, वो संस्कृति उनका है हमारा नहीं है। हमारा संस्कृति क्या है, हमारी स्त्रियां जो है पूरे बदन में कपड़ा पहनती हैं, इस संस्कृति को जानती है कि इसका महत्व क्या है, इसको ध्यान करती है, बच्चों को सिखाती है हमारी कन्या हमारी माताएं, नहीं तो बच्चों को मालूम कैसे पड़ेगा। बच्चों को मालूम कितना है, दिवाली है मिठाई खाना है फटाखा फोड़ना है बस मजा करना है, दैट्स ऑल। बड़े लोग क्या सोचते हैं, दारू पीना है, दिवाली है छुट्टी में दारू पी के मजा करना है बस। लेकिन इसका महात्म्य किसको पता है कि ये इतने महत्वपूर्ण सन है, फेस्टिवल है, त्यौहार है, कि इसको समझ बूझ के मनाने से कितनी हृदय की शुद्धि होती है। ये उत्सव के दिन बैठकर परिवार एकत्र आता है उसमें ये सब याद करना चाहिए कि आज के दिन में क्या हुआ था। साल भर में एकत्र आने को मिलता नहीं है तो एकत्र आकर इस दिनों में भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान को कीर्तन करना चाहिए, उनके गीत गाने चाहिए, मिठाइयाँ और अच्छे अच्छे भोग लगा कर भगवान को भोग लगाना चाहिए, और याद करना चाहिए कि इन दिनों में कितने अच्छे अच्छे घटनाएं हुई थी, हमारे लिए कितना जरूरी है समझना ये। जब कोई माँ को उसकी माँ ने बताया होगा तो वो अपने बच्चों को बताएगी, और बच्चे सुनते सुनते बड़े होंगे तो अपने बच्चों को बताएंगे। ये हमारा कल्चर है, और हम लोग अपना कल्चर को भूलकर जो वेस्टर्न कल्चर है उसको स्वीकार कर रहे हैं। वो लोग कम से कम कपड़े पहनते हैं, हम भी कम से कम कपड़े पहनने लगे हुए हैं। प्रभुपाद जी ने हमारा कल्चर उनको सिखाया। मैं भी मायापुर से लौट के आया, कितनी विदेशी औरतें, चाइनीज, रशियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच, स्पैनिश, इटालियन, सब प्रकार की औरतों आदमियों को मैंने देखा वहां पर, सब धोती कुर्ता पहनकर, पूरी साड़ी पहनकर, पल्लू लेकर, इतनी बड़ी बिंदी लगाकर, कंठी माला, तिलक लगाकर, माला लेकर जप कर रही है, बच्चों को है सर मुंडवाकर ऐसा लंबा शिखा रखे हुए हैं, और दर्शन आरती मंगल आरती में आते हैं बच्चे सब लोग, मेरे सामने लाइन से खड़े हैं। एक चाइनीज बच्चा है, एक रशियन बच्चा है, एक फ्रेंच बच्चा है, एक स्पेनिश बच्चा है, अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, सब दर्शन आरती में खड़े हैं, भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं, दीपक लगा रहे हैं। और हमारे इंडियन लोग जो है उसी मंदिर में, जो बंगला वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, कोई टी शर्ट पहन के आ रहे हैं, कोई हाफ पैंट पहन के आ रहे हैं, हमारे लोग उनके पीछे भाग रहे हैं, वो लोग हमारे पीछे भाग रहे हैं, है ना। कितना हमारा नामुष्की बोलते हैं मराठी में, नामुष्की, कितनी नामुष्की। वो लोग प्रभुपाद जी की कृपा से अपनी संस्कृति को स्वीकार रहे हैं, खुद की को भूलकर अपने देश में आकर रह रहे हैं। अब बच्चे यहाँ पर मतलब क्या हुआ, उन्होंने घर बनाया यहाँ पर, उधर ही रहते हैं वो। साल में 2 महीना आदमी जाता है, 2-3 महीना कमाई करके आता है, एकदम सिंपल साइकिल लेके वहाँ पर घूमता है, बच्चे वहाँ गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, रोज मंगल आरती में आते हैं, मंगल आरती का उनका फिक्स है, मंगल आरती हो गया, दर्शन आरती हो गया, सब बच्चों को खीर चाहिए, तो भगवान का महाप्रसाद खीर सब बच्चे खाते हुए मिलेंगे आपको। मंदिर से बाहर आएंगे आप, दर्शन आरती करके सब बच्चे जो है खीर खा रहे हैं, ये उनका संस्कार है। सुबह जल्दी उठना है, तिलक लगा कर मंदिर जाना है, दर्शन करना है, और बाद में महाप्रसाद खाना है, फिर स्कूल जाना है। कितना बढ़िया बालपन है देखो आप, हम लोग क्या करते हैं, टॉफी खाते हैं, केलॉग्स खाते हैं, हाँ कच्चा पुराना बासी माल खाते हैं, मतलब केलॉग से शक्ति आती है। जो बना बनाया माल बाहर का मार्केट का है, जूना माल, उसको दूध में मिलाते हैं और खाते हैं। कोई नया फ्रेश बनाया उपमा नहीं, कोई पोहा नहीं, कोई डोसा नहीं, कुछ नहीं। उससे हम कितनी संस्कृति बढ़ी है हमारे, देखो इतना शक्ति हमारे अंदर। तो यही समझने का प्रयास करना चाहिए। गांव के अंदर रहने को आए वो लोग, और कार्तिक महीने में विदेश के लोग प्लानिंग करके छुट्टी लेकर पैसा इकट्ठा करके एक महीना आकर वृंदावन में या मायापुर में बिताते हैं। बोले कार्तिक महीने में धाम में रहना है। हम लोगों को पता ही नहीं कार्तिक महीना क्या होता है और धाम क्या होता है, और कार्तिक महीने धाम में जाना क्यों चाहिए, हमें कुछ पता ही नहीं। हम लोग सब भूल चुके हैं। हम लोग अपना जो है महत्वपूर्ण धन जो है वो सब भूल गए हैं। वो लोग जो है सब भोग लेकर परेशान हो गए, वो भारत की ओर मन शांति के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए खोजते हुए आ रहे हैं और उनको प्राप्त हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद करो। और रही बात दीपावली के दिन भगवान को यशोदा माई ने बांध दिया था, बहुत सुंदर कहानी है, आप लोगों को आनंद आएगा सुन के। अनंत बार हजारों बार आप सुनेंगे फिर भी आपको ये कथा सुनकर लाभ होगा और मन भी बहुत आनंदित हो जाएगा। ये महीना ऐसा है कि इस महीने में भगवान ने माखन चुराया, कई कथाएं हैं उसकी, अनंत कथाएं हैं, लेकिन एक कथा जो आती है हमारे भागवत में वो ये है कि उस दिन भगवान छोटे बालक थे, थक के आ गए और माता जो है उस समय मंथन कर रही थी दही का, बड़े पात्र में सुरुभि गायों का सुगंधित दूध, जिस दूध को कमल की खुशबू आती है। अबे हमारा कलम कमल अभी कभी सूंघा है क्या, कभी खुशबू आया कमल का अपना? कलयुग में कमल की खुशबू की तरह आती है, सब कुछ नकली हो गया आजकल। लेकिन कमल को इतनी सुगंध होती है कि हम लोग यकीन नहीं कर सकते हैं, उसको पुष्पगंधा कहते हैं। तो वो दूध था पुष्पगंधा, उस पुष्पगंधा दूध से वो मंथन कर रही है दही बनाकर, और भगवान के लीलाओं का गुणगान कर रही है, गीत गा रही है। गीत गाते गाते छम छम उसके बैंगन जो है ना कंगन, वे छुम छुम आवाज कर रहे हैं, एक दूसरे को लग रहे हैं, और भगवान की माता भगवान की लीलाओं को याद करते करते मंथन कर रही है। उतने भगवान आते हैं छोटे से, वो गोद में घुस जाते हैं और पल्लू खींचते हैं, तो समझते हैं कि इसको दूध पीना है, तो वो मंथन रोक देती है और पल्लू के नीचे उसको लेकर दूध पिलाने लगती है। कितना सुंदर सीन है, परमात्मा परम ब्रह्म भगवान जो है बालक बनकर अपने लीला कर रहे हैं, माता का दूध पी रहे हैं, माता को परम आनंद दे रहे हैं। सोच सकते हैं आप, परम भगवान जिसके गोद में दूध पी रहा है उसके लिए जीवन में और क्या चाहिए। तो अचानक माता को कुछ जलने की खुशबू आती है, क्या जल रहा है? ऐसा ही पद्मगंधा दूध जो है जिसका दही बनाकर मंथन हो रहा है, वैसा ही दूध जो है वो गैस पर रखा है, चूल्हे पर रखा है, इसका मिठाई बनाना है। तो वो क्या हुआ, जलकर अग्नि में गिर गया, तो उसका जलने का बू आया, तो मजाक लगा, अरे इतना कीमती दूध जो है वो खत्म हो रहा है, बालक लाला के लिए मैं मिठाई कैसे बनाऊंगी। तुरंत उसको गोद से उतारती है और किचन में भागती है। लाला को बहुत गुस्सा आता है, जब मैं दूध पी रहा हूं तो उसके सामने दुनिया में और कोई बड़ा काम नहीं हो सकता, सब कुछ छोड़कर मेरी सेवा होनी चाहिए। और माता निकल कर चली गई, अब मैं सबक सिखाऊंगा माता को, ऐसे सबक सिखाऊंगा कि याद करेगी वो। तो उठते हैं गुस्से से और वो मटके से रवि निकालते हैं और जोर से मटके को मारते हैं, मटका पूरा बड़ा जो है उनके भी लंबा साइज का मटका है, उनसे भी ऊंचा है, उसको फोड़ कर पूरा छाछ सब जगह फैलता है, उसके ऊपर मक्खन तैर रहा है वो भी फैलता है, सब मक्खन अपने हाथ से उठा उठा खाता है। फिर उसको याद आती है अब मैया गुस्सा करेगी, तो डर जाता है, फिर सारा मक्खन खा लेता है और वो छाछ के में अंदर से पैर चल के अगले वाले कमरे में जाता है, वहाँ पर देखता है कि बहुत सारे मटके लटक रहे हैं। तो वो सब देखकर पूरे बंदरों को बुलाता है, अपने दोस्तों को बुलाता है, उखल रखा होता है वहाँ पर, तो उखल पे चढ़ता है और वो मटका फोड़ता है और उसका मक्खन उतार कर सबको बांटता है, खुद भी खा रहा है, बलराम को दे रहा है, उज्ज्वल को दे रहा है, मधुमंगल को दे रहा है, इसको दे रहा है, उसको दे रहा है, तो बंदर आ जाते हैं, उन बंदर को भी अपने हाथ से खिला रहा है सबको। सारे मटके एक एक करके फोड़ के खुद खा रहा है, मित्रों को दे रहा है, और सारे मित्र जो अपने हाथ से, एक हाथ खुद खा रहा है, एक हाथ बंदर को दे रहे, खुद खा रहा है एक बंदर को दे रहे बंदर भी दोनों हाथ से खा रहे हैं एकदम प्रेम से, और सब लोग ऐसे एकदम मग्न होते हैं, मग्न। अरे बाप रे, इतना सुंदर अपने भगवान के हाथ से, कृष्ण कन्हैया के हाथ से खाने को मिल रहा है, इतना बड़ा भाग्य किसको मिलता है? देवताओं को उनका प्रसाद भी नहीं मिलता है, ये तो खुद के हाथ से जूठन खिला रहे हैं। उतने में दूध उतार कर मैया किचन से आती है और देखती है तो क्या, इतना बड़ा मटका टूटा हुआ, सारा मक्खन खत्म, सारा छाछ फैला हुआ, उसमें से नन्ने नन्ने पैर जो है वो बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, बालक ने शरारत किया है। जाती है, एक डंडा उठाती है और डंडा उठाकर जो छाछ में से छोटे छोटे पैर बाहर निकल रहे हैं उसको पकड़ के आगे आगे जाती है तो वो पैर दूसरे कमरे में घुसते हैं। देखते हो तो क्या, पूरा मंडली है वहां पर, पूरा बड़ा सत्संग चल रहा है। हाँ, कृष्ण भगवान, बालक, बलराम जी, सब सखा एकदम मग्न है, सब लटके हुए मटके फूटे हुए हैं, हाथ में सबके पड़े हुए हैं, और एक एक हाथ में, दोनों हाथ में मक्खन लगे हुए हैं, मुंह में लगे हुए हैं, बंदर लोग के हाथ में लगे, बंदर के मुंह में लगे हुए हैं, सब लोग आनंद ले रहे हैं, और सबकी पीठ माता की ओर है, दरवाजे की तरफ सबकी पीठ है, माता अंदर आ रही, देखे वाह क्या सीन चल रहा है। तो दबे पांव से माता आती है तो सबसे पहले बंदरों को पता चलता है कि अरे मैया आ रही है, तो ऐसे करते हैं, जैसे बंदर का चेहरा बदले होता है, सबको पता चलता है मैया आ गई है, सब बच्चे लोग भाग जाते हैं। जब सब बच्चे भागते हैं तो मैया जो है कृष्ण को पकड़ने के लिए आगे जाती है और कृष्ण भी भाग जाते हैं और पूरे घर में भागते हैं, पूरे घर में भाग रहे हैं, बालक आगे भाग रहे हैं, मैया पीछे भाग रही है, बालक आगे भाग रहा है, मैया पीछे भाग रही है। आप देख सकते हैं पूरे संसार को चलाने वाले, पूरे संसार के साधु ऋषि मुनि जिनके पीछे भागते हैं उनके पीछे मैया भी भाग रही है। कि कैसे भाग रही है, वंदन करती नहीं भाग रही है, डंडा लेके भाग रही है ये भी कैसा सीन है देखो आप, जिनको प्राप्त करने के लिए सब साधु लोग तपस्या करते हैं उनको पकड़ने के लिए मैया डंडा लेके भाग रही है, पूरा घर भाग रही है। मैया पे इतनी बड़ी शरीर की है, बुजुर्ग है, छोटा छोटा बच्चा है, वो जोर से भाग रहा है, मैया को इतना स्पीड नहीं है। रुक जा बेटा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, मैं दंड दूंगी तुमको, तुमने माखन चुराया है, मटका फोड़ा है, मेरा कीमती मक्खन नष्ट कर दिया है, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, दंड दूंगी, भागो मत, रुको रुको रुको, पूरा घर कई बार दौड़ाता है, फिर थक जाती है, फिर लाला सोचते हैं अरे इतना भगाया मैया को, कोई बात नहीं, पकड़े जाते हैं, उसमें क्या है, तो पकड़े जाते हैं। तो भगवान को पकड़ना किसी के हाथ में नहीं है, जब वो पकड़े जाने के लिए तैयार होते हैं तभी वो पकड़ सकते हैं उनको। आप इतना देर भगाया तब पकड़ नहीं पाए, सोचा कि हाँ चलो पकड़े जाते हैं, तो पकड़ा, बोला अच्छा तुमने आज बड़ा अपराध किया है, ये उखल ने तुम्हारा साथ दिया है, तो उखल को और तुमको आज बांध देते हैं, आओ सखियों सब लोग आ जाओ, गाय को, जिस गाय को पैरों को जो बांधते हैं ना दोरियां, वो सब लेके आओ। गोकुल में कैसे होता है, जब गाय का दूध निकालते हैं ना तो पीछे के दोनों पैर को बांध देते साथ में, क्योंकि अगर नहीं बांध देते तो गाय का मूड आया तो टोंग एक किक मार देती है वो दूध वाले के मुंह पे तो उसका दूध भी गिर जाता है और दूध वाला भी गिर जाता है, तो इसलिए दूध को निकालने के समय वो दोनों पैर को एक साथ बांध देते हैं ताकि गुस्सा आएगा तो भी वो लात नहीं मार सकते। तो वो कितनी दूरी होती है, छोटी सी होती है ना, दोनों पैर को बांधने की इतनी इतनी हो रही है, सारे घर की दूरी लेके आते हैं, जोड़ जोड़ के बांधते हैं उसको, फिर भी गांठ नहीं मार सकते हैं, इतनी बार घुमाया तो भी वो शॉर्ट हो जाती है, तो और पुकारती है आओ सखियों सब लोग अपने अपने घर की दूरी लेके आओ। सब गोकुल की जितनी दूरियां थी सब आ गए वहां पर। आचार्य लोग कहते हैं कि उस दिन दूरियों का उत्सव था, सब दोरिया इकट्ठा हो गई उस दिन भगवान को बांधने के लिए, लेकिन जिन दोरियों को भगवान ने निर्माण किया है वो भगवान को क्या बांध सकती है, वो थी ना मकड़ी मकड़ी, कोड़ी कोड़ी, कोड़ी जो जाल बनाता है उसमें खुद नहीं फंसता कभी, वो देखा कभी आपने, मक्खी फंसती है, मच्छर फंसता है, सब फंस जाते हैं, और वो चलता है ऐसे ही कि एकदम बिंदास चलता है उसके ऊपर, सब जगह एंड में जाके मछली को पकड़ता है, मक्खी को, लेकिन वो खुद नहीं फंसता है उसके अंदर। उस तरह जिस संसार को भगवान ने निर्माण किया है उसमें कैसे फंसेंगे भगवान, नहीं फंस सकते हैं। तो सारी दोरियां जोड़ जोड़ कर जोड़ जोड़ कर जोड़ जोड़ कर माता थक जाती है, लेकिन इतनी सारी दोरियां ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಇತನಿ ದೋರಿಯಾ ಇಕಟ್ಟಾ ಕರ್ಕೆ ಭೀ ಉನ್ಕೋ ಬಾಂಧ ನೀ ಸಕತೆ. ಫಿರ್ ಭಗವಾನ್ ದೇಖತೆ ಮಯಾ ಬಹುತ್ ಥಕ್ ಗಯಿ ಹೈ, ಮೇರೆಕೋ ಬಾಂಧನೆ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ ಕರ್ಕೆ ಥಕ್ ಗಯಿ ಹೈ, ಬಸ್ ಇಧರ್ ಕಪಾಲ್ ಮೇ ಸಿ ಪಸೀನಾ ಆ ರಹಾ ಹೈ, ಸೋಚ ರಹೀ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಕರೂ ಅಭಿ ಮೇ, ಯೇ ಕ್ಯಾ ಚಮತ್ಕಾರ ಹೈ. ತೋ ಬೋಲ್ತೆ ಚಲೋ ಬಂದ್ ಜಾತೆ ಹೈ, ಪಹಲೇ ಬೋಲ್ತೆ ಪಕಡ್ ಜಾತೆ ಹೈ, ತೋ ಪಕಡೆ ಗಯೆ, ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಸೋಚತೆ ಹೈ ಬಂದ್ ಜಾತೆ ಹೈ ಅಭಿ. ತೋ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ, ದೋ ಉಂಗ್ಲಿಯಾ ಛೋಟಿ ಪಡ್ತಿ ಹೈ ಬಾಂಧನೆ ಕೇ ಲಿಯೆ. ವೋ ದೋ ಉಂಗ್ಲಿಯಾ ಕೌನ್ ಸಿ ಹೈ, ಏಕ ಉಂಗ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸ್ ಓ ದೂಸರಿ ಉಂಗ್ಲಿ ಕೃಪಾ. ಜಬ್ ಹಮ್ ಪ್ರಯಾಸ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ತೋ ಕೃಪಾ ಮಿಲ್ತಿ ಹೈ, ತೋ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ. ತೋ ದೋ ಉಂಗ್ಲಿಯಾ ಕಹತೆ, ದೋ ಉಂಗ್ಲಿ ಛೋಟಿ ಪಡ್ ರಹೀ ಥಿ ದೋರಿ ಹಮೇಶಾ. ವೋ ದೋ ಉಂಗ್ಲಿ ಕೌನ್ ಸಿ ಹೈ, ವೋ ಏಕ ಹೈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯಾಸ್, ಔರ್ ಏಕ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಕೃಪಾ. ಹಮಾರೆ ಪ್ರಯಾಸ ಸೇ ಹಮ ಸಫಲ ನೇ ಹೋತೆ ಹೈ, ಹಮಾರೆ ಪ್ರಯಾಸ ಹೋನೆಕ್ಕೆ ಬಾದ್ ಜಬ್ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಕೃಪಾ ಹೋತಿ ಹೈ ತಬ್ ಹಮ ಸಫಲ ಹೋ ಜಾತೆ. ತೋ ಮಯ್ಯಾ ನೇ ಪ್ರಯಾಸ ಕಿಯಾ, ಭಗವಾನ್ ಕೋ ದಯಾ ಆಯಿ, ಭಗವಾನ್ ನೇ ಬೋಲಾ ಠೀಕ್ ಹೈ, ತುಮ ಫಿರ್ ಬಂದ್ ಗಯೆ. ತೋ ಉಖಲ್ ಕೋ ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಬಾಂಧ ಕೆ ಛೋಡ್ ದಿಯಾ, ಬೋಲೋ ಬಹುತ್ ಶರಾರತ್ ಕರ್ತೆ ಹೋ, ಪಡೆ ರಹೋ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಅಭಿ, ಮುಜೆ ಬಹುತ್ ಕಾಮ ಹೈ, ಚಲೆ ಜಾತೆ. ಭಗವಾನ್ ನಾಟಕ ಕರ್ ರೋನೆ ಕಾ, ಮತ್ ಮಾರೋ ಮತ್ ಬಾಂಧೋ ಮತ್ ಬಾಂಧೋ, ಮೈ ದುಬಾರಾ ನೀ ಕರುಂಗಾ ದುಬಾರಾ ನೀ ಕರುಂಗಾ, ನೀ ನೀ ಅಭಿ ಇಸ್ ಬಾರ ಬಹುತ್ ತುಮಾರಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಯಾ ಮೇರೆ ಪಾಸ್, ಹರ್ ಬಾರ ಮೈನೆ ಸೋಚಾ ಕಿ ತುಮ ಸಚ್ಚೆ ಹೋ, ಬಾಕಿ ಲೋಕ ಝೂಠ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಅಭಿ ಮೈನೆ ಮೇರೇ ಆಂಖೋ ಸೇ ದೇಖಾ ಹೈ, ಅಬ್ ಮೈ ತುಮೇ ಮಾಫ್ ನೀ ಕರುಂಗಿ, ಪಡೆ ರಹೋ ಯಹಾಂ ಪರ್. ಸಬ್ ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ ಆತೆ ಹೈ, ಅರೇ ಬಿಚಾರಾ ತೂನು, ಕುಚ ಲೋಕ ಐಸಾ ಬೋಲ್ ರೇ, ದುಃಖ ಹೋ ರಾ ಉನ್ಕೋ ಬಿಚಾರಾ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಬಂದ್ ಗಯಾ. ಕುಚ ಮಿತ್ರ ಆತೆ ಬೋಲ್ತೆ, ಅಚ್ಛಾ ಹುವಾ, ಹರ್ ಬಾರ್ ಚೋರಿ ಕರ್ತೆ ಹೋ ಔರ್ ಹಮ್ ಪಕಡೆ ಜಾತೆ ಹೈ, ತುಮ ಭಾಗ ಜಾತೆ ಹೋ, ಡಂಡಾ ಹಮ್ ಖಾತೆ ಹೈ, ತುಮ ವಹಾಂ ಪರ್ ಮಜಾ ದೇಖತೆ ಹೋ, ಆಜ ಪಹಲಿ ಬಾರ್ ತುಮ ಪಕಡೆ ಗಯೆ, ಬಹುತ್ ಅಚ್ಛಾ ಹೋ ಗಯಾ. ಫಿರ್ ಗೋಪಿಯಾ ಆತಿ ಹೈ, ಬೋಲ್ತೆ ಕಿತನಾ ಬಿಚಾರಾ ಬಾಲಕ. ಯಶೋದಾ ಕೋ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತೆ, ಛೋಡ್ ದೋ ಉಸ್ಕೋ ಛೋಡ್ ದೋ, ಕುಚ ನೀ ಛೋಡುಂಗಿ, ತುಮ ಲೋಗ ಮುಜೆ ಕುಚ ಬೋಲೋ, ಕುಚ ಮತ್ ಬೋಲೋ ಮುಜೆ ಆಪ್. ಫಿರ್ ಕುಚ ಗೋಪಿ ಆಕೆ ಬೋಲ್ತಿ, ಅಚ್ಛಾ ಹೋ ಗಯಾ, ಹಮಾರೆ ಘರ್ ಪೇ ಆಕೆ ರೋಜ್ ಮಾಖನ್ ಚುರಾತೆ ಹೋ, ಔರ್ ಜಬ್ ಹಮ್ ಜಾತೆ ಹೈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ತೋ ಕುಚ ನಾ ಕುಚ ಬಹಾನಾ ಬನಾ ಕೆ ಉಲ್ಲೂ ಬನಾತೆ ಹೋ, ಹಮ್ ಕೋ ಹೀ ಮಜಾಕ್ ಹಮಾರಾ ಉಡಾತೆ ಹೋ, ಅಚ್ಛಾ ಹೋ ಗಯಾ ಆಜ ತುಮ ಬಂದ್ ಗಯೆ. ತೋ ಕಿತನಾ ಪ್ರಕಾರ ಕಾ ಸೀನ್ ಫೇಸ್ ಕರ ರಹೇ ಹೋ ಬಾಲಕ, ಕುಚ ಬೋಲ್ ರೇ ಅಚ್ಛಾ ಹೋ ಗಯಾ, ಕುಚ ಬೋಲ್ ರೇ ಬುರಾ ಹೋ ಗಯಾ, ಕುಚ ರೋ ರಹೇ ಹೈ. ಉತ್ನೆ ಬಲರಾಮ್ ಜಾತೆ ಹೈ, ಅಚ್ಛಾ ಪಹಲೆ ಕುಚ ದೋಸ್ತ ಜೊ ಹೈ ವೋ ಬೋಲ್ ಜೊ ಉನ್ಕೋ ಬುರಾ ಲಗ್ತಾ ಹೈ, ವೋ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಖುಲ್ನೆ ಕಾ ಉಸ್ಕೋ, ಲೇಕಿನ್ ಜೊ ಮಾತಾ ನೇ ಬಾಂಧಿ ಹುಯಿ ಗಾಂಠ ಹೈ ವೋ ಬಚ್ಚೋ ಸೇ ನಹೀ ಖುಲ್ತಿ ಹೈ, ಜೊ ಪ್ರೇಮ ಮಾತಾ ಕಾ ಹೈ ವೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈ ಬಚ್ಚೋ ಸೇ, ತೋ ವೋ ಭಾವ ಸೇ ಜೊ ಬಾಂಧಾ ಹುವಾ ಗಾಂಠ ಹೈ ವೋ ಛೋಟೇ ವಾಲೆ ಲೋಕೋಂಕೋ ನಹೀ ಛೂಟತಾ ಹೈ, ಪ್ರಯಾಸ ಕರ್ ರಹೇ ಲೇಕಿನ್ ನಹೀ ಛೂಟ್ ಪಾ ರಹೇ. ತೋ ಬಲರಾಮ್ ಜಿ ಆತೆ ಹೈ, ಮೈ ಖೋಲ್ತಾ ಹೂಂ, ಖೋಲ್ನೆ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ ಕರ್ತೆ ಉನ್ಕೋ ಭೀ ನಹೀ ಖುಲ್ತಾ ಹೈ. ತೋ ಕಹತೆ ಹೈ, ಅರೇ ಬಲದಾವು ಭಯ್ಯಾ ಕುಚ ಕರೋ, ಠೀಕ ಅಭಿ ಮಯ್ಯಾ ಸೇ ಬಾತ್ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ, ಐಸಾ ಬಾತ್ ಕರುಂಗಾ ನಾ ತುರಂತ ಆಕೆ ಛೋಡ್ ದೇಗೆ ಆಪ್. ಅಂದರ್ ಮಯ್ಯಾ ಕಾಮ ಕರ್ ರಹೀ ಹೈ, ಮಯ್ಯಾ ತುಮನೆ ಅಚ್ಛಾ ನೀ ಕಿಯಾ, ಛೋಟೆ ಭಯ್ಯಾ ಕೋ ಬಾಂಧ ಕೆ ರಖಾ ಹೈ, ತುಮ ಜಾನತೆ ನಹೀ ವೋ ಕೌನ್ ಹೈ. ಕೌನ್ ಹೈ ವೋ? ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕಾ ಉಗಮ ಹೈ ವೋ, ಪೂರ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾ ರಚಯಿತಾ ಹೈ, ಹಾಂ ಸಾರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೋ ನಚಾತಾ ಹೈ, ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರ್ತಾ ಹೈ, ಪೂರಿ ದುನಿಯಾ ಉಸ್ಕೆ ಪೀಚೆ ಭಾಗತಿ ಹೈ, ತಪಸ್ಯಾ ಕರ್ತಿ ಹೈ, ಯೋಗ ಯೋಗಿ ಜನ ಧಾನಿ ಜನ ತಪಸ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಫಿರ್ ಭೀ ಉನ್ಕಾ ದರ್ಶನ ನಹೀ ಹೋತಾ ಹೈ, ವೋ ಹೈ ವೋ ತುಮಾರಾ ಬಾಲಕ. ಬೋಲಾ ಅಚ್ಛಾ, ಔರ್ ಮೈ ಜಾನತಿ ಹೂಂ ಕೌನ್ ಹೈ, ಮೈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಗ ಹೂ, ವೈಕುಂಠ ಮೇ ಮೇರೆ ಊಪರ್ ಸೋತಾ ಹೈ ವೋ, ಸ್ವಾಮಿ ಹೈ ವೈಕುಂಠ ಕಾ, ಅನಂತ ಲೀಲಾ ಕರ್ತೆ ಹಮ್ ಲೋಕ ಮಿಲ್ಕರ್, ಜಾನತೆ ಹೋ ತುಮ ಕೌನ್ ಹೈ ವೋ, ತುಮ ಉಸ್ಕೋ ಬಾಂಧ ಕೆ ರಖಾ ಹೈ, ತುಮ ಸಮಝ ಮೇ ನೀ ಆ ರಹಾ ಹೈ. ತಾಯಿ ಬೋಲ್ತಿ, ಅಚ್ಛಾ ಸಬ್ ಅವತಾರೋ ಕೋ ಮೇರೆ ಘರ್ ಮೇ ಹೋನಾ ಥಾ ಕ್ಯಾ? ಮಯ್ಯಾ ಕಾ ಪ್ರೇಮ ಜೊ ಹೈ ವೋ ಇತನಾ ಗಹರಾ ಹೈ, ಯೇ ಸಬ್ ಬಾತೆ ಮಯ್ಯಾಕ್ಕೆ ಸಮಝ ಮೇ ನೀ ಆ ರಹೀ ಹೈ, ಕಿ ಮೇರಾ ಬಾಲಕ ಭಗವಾನ್ ಹೈ, ಮೇರಾ ಯೇ ಛೋಟಾ ಬಡಾ ಬಾಲಕ ಶೇಷ ನಾಗ ಹೈ, ಕು ಸಮಝ ನೀ ಆ ರಹಾ ಹೈ, ಇತನಾ ಪ್ರೇಮ ಗಹರಾ ಹೈ ಉನ್ಕಾ. ಬೋಲೆ ತೂ ಆ ಬಡಾ ಅವತಾರ ಬನ್ಕೆ ಆಯಾ ತೋ ದಂಡಾ ಲಗೆ ತೆರೆ ಮುಜೆ ಭಾಗ ಗಯಿ ವೋ, ಫಿರ್ ಭಾಗ ಗಯಾ, ಹಾಂ ಬಡಾ ಆಯಾ ಅವತಾರ ಬನ್ಕೆ ಮೇರೆಕೋ ದಿಖಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ, ಚಲೋ ಭಾಗೋ ಯಹಾಂ ಸೇ. ಕಿತನಾ ಬಡಾ ಅಧಿಕಾರ ಹೈ ಮಾತಾ ಕಾ, ದೇಖೋ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ್ ಕೋ ಡಂಡಾ ದಿಖಾ ಕಾ ದಂಡ ದೇ ರಹೀ ಹೈ ವೋ, ವೋ ಭೀ ಡರ್ ಕೆ ಭಾಗ ರಹೇ ಹೈ, ಕಿತನಾ ಬಡಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ, ಜಿಸ್ಕೆ ಭಯ ಸೇ ಭಯ ಭೀ ಕಾಂಪ್ತಾ ಹೈ, ಮೃತ್ಯು ಭೀ ಕಾಂಪ್ತಾ ಹೈ, ಐಸೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋ ಡಂಡಾ ದಿಖಾ ಕರ್ ಭಗಾ ರಹೀ ಹೈ ವೋ, ಕಿತನಾ ಬಡಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ, ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಡಂಡಾ ದಿಖಾ ಸಕ್ತಿ ಹೋ ಪ್ರೇಮ ಕಿ ವಜಹ ಸೇ. ತೋ ಹಮಾರೇ ಏಕ ಮುನಿ ಹೈ, ವೋ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಮೈ ಕಿಸಿ ಕೋ ನಹೀ ಮಾನ್ತಾ, ಮೈ ಕೇವಲ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೋ ಮಾನ್ತಾ ಹೂಂ. ಕ್ಯೂ? ಅರೆ ಇತನಾ ಬಡಾ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೈ ಕಿ ಉನ್ಕೆ ಆಂಗನ್ ಮೇ ವೋ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜೊ ಹೈ ಬಚ್ಚಾ ಬನ್ಕೆ ಖೇಲ್ ರಹಾ ಹೈ, ಉಸ್ಕೆ ಕೀಚಡ್ ಮೇ ಆಂಗನ್ ಕೆ ಖೇಲ್ ರಹಾ ಹೈ ವೋ, आनंद दे रहा है उसको बच्चा बन के, तो कौन बड़ा हो गया? जो परम ब्रह्म परम भगवान है वो बालक बन के उसकी खुशी के लिए नाच रहा है उधर, मैं उनकी पूजा करूंगा, ऐसा बोलता है। तो उतने में क्या होता है, बालक रोते लगता है, कोई कोई उपाय नहीं चल रहा है, ना बलराम का जादू चला ना किसी का जादू चला, मैं तो बंदा ही हूँ, चलो और कुछ मजा करते हैं, माँ को सबक सिखाते हैं। तो उसको खींच खींच के वो घर के आंगन के बाहर चला गया, आंगन में बांध के रखा था तो आंगन के बाहर उसको लेके गया, गोल गोल घुमाते 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 पूरे बाहर निकल गया घर के, छोटा सा बालक है। दो पेड़ लगे हुए थे उसके बीच में उखल अटक गया, जोर से खींचा, दोनों पेड़ धड़ाड़ करके गिर गए और उसमें से दो देवता प्रकट हो गए। कौन थे वो? नल कुबेर और मणिग्रीव, कुबेर के बेटे थे वो। उसकी भी एक लंबी कहानी है, उसको छोटे बताते आपको। वो कहानी ऐसी है कि सत्ययुग में ये दोनों कुबेर के बेटे हैं। कुबेर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर, देवताओं का, सब देवताओं का धन दौलत संभाल के रखता है वो। तो ये बड़े बाप के दो बिगड़े हुए बेटे थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। ये इतनी मस्ती थी उनको कि दारू पी के नशे में चूर होके बहुत सुंदर सुंदर अप्सराओं को लेकर नदी में स्नान कर रहे हैं, और सब लोग बिना कपड़े के, एवरीबडी, औरतें भी और आदमी भी, ये दो आदमी और बाकी सारी औरतें नशे में चूर होकर मजा कर रहे पूरे। और वहाँ से नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि को देखते हुए तुरंत जो औरतें हैं तुरंत भाग जाती है और अपने आप को कपड़े से ढक लेती है। अरे नारद मुनि आ रहे हैं, देव ऋषि नारद मुनि, लेकिन ये इतने नशे में चूर है कि इनका ध्यान ही नहीं, लड़कियां भाग रही हैं फिर भी ध्यान नहीं है, अपने नशे में चूर नंगा ही घूम रहे। तो नारद मुनि पहुंचते हैं उनके पास में, बोलते अरे इतने बड़े देवता के पुत्र हो तुम, उनको शर्म नहीं है कुछ, कोई कल्चर नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई आदर नहीं है, कुछ नहीं है, और नंगे घूम रहे हो फिर भी मेरे सामने भी, जाओ तुमको मैं श्राप देता हूँ कि तुमको नंगा रहने का आदत है, अच्छा लगता है तो पेड़ बन जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? जो सबसे कम कपड़ा पहनते हैं वो आगे जाकर पेड़ बन जाते हैं, हॉलीवुड लॉलीवुड टॉलीवुड सब लोग जाके वुड बन जाते हैं। सोचो इसके बारे में, हॉलीवुड का मतलब क्या है, बॉलीवुड का मतलब क्या है, जो सबसे कम से कम कपड़ा पहनने को तैयार है उनको वहाँ एंट्री मिलती है। कोई नमवारी साड़ी पहन के पल्लू पहन के जाएगी तो बोला इसमें मराठी पिक्चर में काम करो, लेकिन मराठी पिक्चर में भी आपका आजकल सब ऐसे ही होता है। संक्षेप में कहने का मतलब क्या है, जो आदमी और जो औरत अपने शरीर को अधिक से अधिक खोल के लोगों को दिखाता है, कम से कम कपड़ा पहनता है, उसको इस जीवन के बाद में पेड़ बनना पड़ता है, ये हकीकत है। अगर यकीन नहीं है तो आपको अपने जीवन में होते हुए नजर आएगा। यू डोंट बिलीव। एक तरफ इंसान है जो अकेला जीव है जो कपड़ा पहनता है, और एक तरफ जानवर है, पंछी है, मछली है, जो कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं, खाली एक ही मनुष्य कपड़ा पहनता है। और कोई कपड़ा पहनता है क्या? कुत्ता बिल्ली, देखा क्या आपने? जब मनुष्य उसको कभी सर्कस में पहनाएगा तो वो पहनता है, लेकिन अपने आप में उनके लिए कपड़ा पहनने की गुंजाइश नहीं है। और अगर आप इंसान हो, आपको कपड़ा पहनने का संस्कार है, और एक तरफ जानवर है जो बिना कपड़े का नंगा घूमता है, जब आदमी कम 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 कपड़े पहनने लगता है तो किस ओर जा रहा है? वो जानवर की ओर जा रहा है। तो भगवान कहते हैं इतनी तुमको नंगा होने की इतनी ख्वाहिश है, क्यों इंसान बनते हो? जानवर बन जाओ, पेड़ बन जाओ, अपना नंगा रहने की इच्छा पूरी करो, कोई आक्षेप नहीं लेगा आपके ऊपर। आपके सोसाइटी के अंदर इतना कुत्ता बिल्ली घूमते रहते, कोई बोलता है क्या? क्या नंगे घूमते हो, शर्म नहीं आती क्या? ऐसा कोई बोलता है क्या उसको? ये लो कपड़ा, कम से कम लंगोटी तो पहनो, बेशर्म कहीं का, ऐसे कुत्ते को बोलते क्या हम लोग? लेकिन कोई आदमी निकलेगा तो बिना कपड़े के, तो कपड़ा भी पहनाएंगे और बोलेंगे पागल हो गया, इसको साइकेट्री में दिखाओ, क्योंकि वो इंसान है। तो नारद मुनि ने श्राप दे दिया उनको कि इतने बड़े देवता होकर, बेशरम होकर, कपड़ा निकालकर, नशा में चूर होकर मजा कर रहे हो। और दोनों पेड़ बन गए। जब पेड़ बन गए तो नशा उतर गया उनका। जब कोई नशे में आदमी को पुलिस मिलता है, पुलिस को दो लगा तमाचा लगाता है, थाड़ करके नशा उतर दिया, अरे बाप रे किधर आ गया मैं अभी, अरे बाप रे पुलिस माफ करना माफ करना। तो वैसे श्राप मिलते ही एकदम होश उड़ गया उनका, नशा भी उड़ गया तो माफी मांगने लगे, नारद मुनि जी माफ करना, तो कुछ डिस्काउंट देना। नारद मुनि कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आपको पश्चाताप हो रहा है अच्छी बात है, आप पेड़ बनोगे तो भी नंद महाराज के आंगन में गोकुल में पेड़ बनोगे। आज सत्ययुग चल रहा है, सत्ययुग में रहोगे पेड़ बनकर, त्रेता में पेड़ बन के रहोगे, दो युग बीत जाएंगे लेकिन बनोगे पेड़ वहीं पर गोकुल में, जो आगे जाकर गोकुल बनने वाला है उस जगह पर पेड़ बन के रहोगे आप। और द्वापर के अंत में परम कृष्ण भगवान जो है वो बालक बनकर आएंगे, ये नंद महाराज के आंगन में खेलेंगे, उस आंगन में आप खड़े होंगे और बालक रूप से तब तक जब तक वो आपको नहीं गिराएंगे तब तक की जितनी लीला है वो सब आप देखोगे, कितना बड़ा भाग्य है देखो। तो ये नारद मुनि का शाप है कि वरदान है? संत लोग जब शाप देते हैं तो वो लगता शाप है लेकिन होता वरदान है। अगर वो नारद मुनि का अपराध नहीं करते तो पेड़ नहीं बनते, दंड भोगा उन्होंने लेकिन नारद मुनि के मुख से शाप मिला इसलिए वो दंड का भी रूपांतर वरदान में हुआ। पेड़ बने भी तो अमेरिका के जंगल में नहीं बने, गोकुल के आंगन में बने। फर्क है उसके अंदर। और पेड़ के रूप में भी बालक की सब लीला देखा उन्होंने, और फिर बालक को बांधा, फिर उखला के अटका, फिर उखड़ को खींचा और पेड़ गिर गए तो इनका उद्धार हो गया, ये प्रकट हो गए पेड़ से, और उन्होंने भगवान का स्तुति किया, गौरव किया, और उस दर्शन के माध्यम से उनको प्रेम भक्ति प्राप्त हो गया। तथा प्रेम भक्तिम स्व कामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थिति दामोदरेह। कुबेरात मजौ बद्ध मूर्तव्य यद्वत्। जैसे आपने कुबेर के दो पुत्रों पर आत्मजाओ दो पुत्रों पर कृपा किया, उनको प्रेम भक्ति दिया, तो नशा में चूर होकर नंगा होकर नाच कर रहे थे वो लोग, उनको भी आपने प्रेम भक्ति दिया, अरे मुझे भी दे दो, जैसा कुबेर के दो पुत्रों को दिया वैसा मुझे भी आप कृपा करो, ऐसा सत्यव्रत मुनि भजन में बोल रहे हैं। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख जालाब्धि मग्नम। हे अनंत, हे दामोदर, हे विष्णु, हे कृपालु, मैं दुख के सागर में डूब रहा हूं। प्रसिद्ध प्रभो दुख जालाब्धि मग्नम, मैं जलाब्धि यानी कि जल से भरा हुआ समुद्र में मैं डूब रहा हूं, जन्म मृत्यु के सागर में दुख भोग रहा हूं। कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानो, इस दीन पर आप कृपा करो, कृपा के दृष्टि करो। गृहाणेश माम अध्यम ए दक्ष दृश्य, मुझे इस दुनिया में और कोई इंटरेस्ट नहीं। तो फिर जब ये पेड़ गिर गए, देवताओं ने स्तुति किया और वापस देवता लोक में चले गए, वो प्रेम भक्ति को प्राप्त करके चले गए, दोबारा नशा करने के लिए नहीं गए, नशा मुक्त हो गए, अभी वो प्रेम संपृक्त हो गए, नशा मुक्त और प्रेम से संपृक्त हो गए। गए वापस तो धड़ाड़ करके जो आवाज आई थी पेड़ गिरने की, नंद बाबा यशोदा माई भाग भाग के आए, पहले बाबा भाग के आए, वो जंगल में थे ना उधर खेत में, तो पहले पहुंच गए, बालक को तुरंत छोड़ दिया, उस उखल से मुक्त कर दिया और गले में लगाया। बोलते किसने किया? बोलते मैया ने किया, कंप्लेन कर रहे हैं मैया ने बांधा मेरे को। तो कुछ बालक है ना वो छुप छुप के देख रहे थे कि अरे, बालकों को पूछा क्या हुआ, बोलते पता नहीं आपको, इसने ना वो उखल खींच खींच के लेके आया, वो दो पेड़ को इसने गिराया और दो बड़े देवता उत्पत्ति हो गए, उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, पता नहीं कौन है हमारा बालक अपना फ्रेंड, ये बड़े बड़े देवता थे, उन्होंने प्रार्थना किया, वंदन किया, गीत गाया इसके लिए, इसने उसको आशीर्वाद दिया, वो दोनों देवता आकाश में चले गए। तो कुछ लोगों को लगा कि बच्चे हैं, कुछ भी ऐसा ही बक रहे हैं, कुछ लोगों को लगा सच बोल रहे हैं, कुछ लोगों का बक रहे हैं। वो बालक जो है रो रो के बोल रहा है, ऐसा जैसे कि डर गया है पेड़ गिरने से, वो कंप्लेन कर रहा है कि माता ने बांधा मुझे, माता ने बांधा, तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को बांधा ऐसे छोड़ दिया बांध के, तुमने माया भाग के आई। तो मैया को देख नहीं रहे, वो मैया इधर से आ रही है तो उधर देख रहा है, ऐसा गोद में पकड़े ना गोद में, तो मैया इधर से आ रही है हाथ लगाने के, तो इधर से इस गोद में आ रहे, तो मैया इधर से आते तो इधर से इस गोद में आ रहे। तो बाबा बोल रहे अरे मैया से नहीं मिलेगा तू? नहीं मिलूंगा, तुम्हें सुबह सुबह फिर मिठाई कौन खिलाएगा? तू बाबा। सुबह सुबह तुमको नहलाएगा कौन? तू बाबा। तो दूध कौन पिलाएगा? तू बाबा। जो पूछ रहे हैं ना, जो माया करती है रोज, वो कौन करेगा? वो बोल रहा है सब तुम करोगे। तो मैया बहुत सोचती है, सुन रहे ना, कि मेरा बालक मुझसे इतना नाराज है कि मुझसे एक भी सेवा लेने को तैयार नहीं है, सब बाबा के पास लेने के लिए बोल रहे हैं। तो मैया को लगता है मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया, अभी मेरी सारी सेवा छिन गई है, मैंने एक अपराध किया, बालक को बांधा, पेड़ गिर गए, तो बालक मुझ पर इतना नाराज है कि एक भी सेवा लेने को तैयार नहीं है, मैं मर जाती हूँ अभी। तो बाबा ने बताया, देखो मैया रो रही है और सोच रही है कि मर जाऊँ अभी। तो फिर मैया भाग के मालक को मिलता। इस तरह से भक्तों की परीक्षा करते हैं भगवान, उनको उत्कंठा देते हैं, अरे एकदम दूर होके कुछ बोलते हैं ऐसा, फिर प्रेम को बढ़ाते हैं, फिर जाके मिलते हैं। तो ये सुंदर लीला जो है ये दीपावली के दिन में हुई थी, यानी कि इस महीने के 24 तारीख को। अभी अगर ये बैठ के इसको याद करेंगे तो दिवाली धन्य होगी आपकी। हाँ, पटाखे फोड़ने से ज़्यादा आनंद आएगा उसके अंदर आपको। फिर इस लीला को याद करते हुए सब लोग उनको दीपक अर्पण करेंगे। नमामिश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, याद करेंगे जिनके घुंघरु, जिनके जो कुंडल है वो आगे पीछे हिल रहे हैं, जिनके कुंडल जो आगे पीछे हिल रहे हैं उनका प्रकाश जो है वो गाल पे गिर रहा है, नीले नीले गाल पर वो कुंडल का प्रकाश जो है वो गिर रहा है, और वो भाग रहे हैं, डर रहे हैं, उनके कंठ की माला जो है वो भी हिलडुल रही है, कमर कांचनी जो है वो भी आवाज कर रही है, भाग रहे हैं, उसके पीछे मैया भाग रही है। कितना सुंदर दृश्य है, देखो आप। ऐसे दामोदर को मैं प्रणाम करता हूं, शतावृत्ति वंदे, मैं 100 बार उसको प्रणाम करता हूं। और कहते हैं कि मुझे और कोई मोक्ष नहीं चाहे, न मोक्षे ग्रह में स्थित दामोदरे वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिम वा न चाण्यम ऋणेहम न, हाँ क्या कहते हैं, नचाण्यम ऋणे हम वरे शाद अपीहा, कोई वर नहीं चाहिए मुझे, मुझे ना मोक्ष चाहिए, ना धन चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी ये बाल लीला जो है दामोदर के रूप में जो आपने की है वो सदैव मेरे हृदय में स्मृति रहे, याद होती रहे, यही मेरी एकमात्र इच्छा है, बाकी सारे वरदान मेरे सामने तुच्छ हैं। लोग मोक्ष के लिए तड़पते हैं, क्या क्या वैकुंठ वास को चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप भाग रहे हैं, माता आपके पीछे प्रेम से भाग रही है पकड़ने के लिए, ये दृश्य जो है वो हमेशा मेरे मन में बना रहे। और मैं इतना पतित हूँ, दुख भोग रहा हूँ, आप कृपा कीजिए मुझ पर, कृपा दृष्टि विष्टाति दीनम बतानू, ये इस महीने का महात्म्य है। और इस महीने में जो ये लीलाओं को समझता है और भगवान को दीप अर्पण करता है उसका जीवन धन्य है। इतना करने से आप लोगों को दोबारा इस दुनिया में दुख भोगने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ेगा। कितना सिंपल बना दिया भगवान ने, हाँ ना जंगल में जाने की जरूरत है आपको, ना धन दौलत परिवार छोड़ के तपस्या करने की जरूरत है, ना त्याग करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं, जो कर रहे हो वो करते रहो, खाली भगवान को दीपक जलाओ, भगवान को दीपक करके अर्पण करो प्रेम भक्ति से, और लीला को याद करो, बहुत छोटी सी कीमत है, उतना करेंगे तो आपका जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, आपके पेट में बच्चे बच्चे भी सुन रहे हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो भी धन्य हो जाएंगे, गर्भावस्था में ऐसे कथा सुनेंगे तो उस पर भी संस्कार होगा, वो भी भगवान का भक्त बनेगा, बाहर निकलेगा तो भगवान की पुकार करते निकलेगा, भगवान की पुकार सुनते निकलेगा, उसका जीवन भी धन्य, आपका भी जीवन धन्य है। लेकिन पता होना चाहिए, नहीं तो दिवाली के दिन दारू पी के बैठेंगे तो क्या पता चलेगा, नरक में जाएंगे, है ना, लोग करते हैं ना सब कुछ ऐसे, बोले छुट्टी का दिन है, मजा करने का दिन है, दुर्भाग्य जीव है, भैया दूज को बहन भाई को नॉनवेज खिलाती है, फिश खिलाती है, तो वो ऐसे बहन के हाथ का फिश खाने के बाद में थोड़ी वो वैकुंठ जाएगा, बहन भी उसको लेके नरक में जाएगी, खुद भी नरक में जाएगा। तो हमको ये समझना है, हम लोग मजा करने का सोचते हैं लेकिन हर मजा का एक कीमत होता है, वो चुकाना पड़ता है, कोई मजा फ्री में नहीं होता है इस दुनिया में, याद रखना, हर मजा का एक पुण्य पाप का हिसाब होता है और सब कुछ मनुष्य को चुकाना पड़ता है, कोई इसमें से फ्री नहीं है, ना इंद्र फ्री है, ना हम फ्री है और ना आप फ्री है। इसलिए आपको इंद्र से भी बढ़कर श्रेष्ठ बनने का मौका है मनुष्य जीवन के अंदर, जो इंद्र को मुमकिन नहीं है वो मनुष्य बनकर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए देवताओं से भी श्रेष्ठ मनुष्य जीवन को माना गया है। इंद्र का जीवन प्राप्त करके वैकुंठ की माला प्राप्त हो रही है, लेकिन इतना मजा में धुंध है वो कि वो पहचान नहीं पा रहा है उसको। तो इसलिए इंद्र बनना हमारे लिए अच्छा नहीं है, देवता बनना हमारे लिए अच्छा नहीं है। मनुष्य जीवन जो है वो इंद्र के जीवन से भी श्रेष्ठ है। और जितना आसानी से यहां से आप भगवान के पास पहुंच सकते हैं, उतना इंद्र को अमरावती से भगवान के पास जाने का रास्ता नहीं है। इंद्र को भी भगवान के पास जाना है तो पृथ्वी पर जन्म लेना होगा, क्योंकि गेटवे ऑफ वैकुंठ यहीं से है। गेटवे ऑफ वैकुंठ इंद्र लोक से नहीं है, याद रखना इस बात को। पृथ्वी लोक से ही वैकुंठ का गेट खुलता है, और आप लोगों ने पृथ्वी लोक में मनुष्य का जन्म लिया है। इस मनुष्य के जीवन में जो भगवान का नाम लेता है और भगवान की सेवा में अपने आप को रखता है, उसको डायरेक्ट भगवान के लोक में एंट्री मिलती है। ना देवताओं को मिलती है, ना और किसी अन्य लोगों को मिलती है, ना राक्षस को मिलती है, ना दानवों को मिलती है, ना किसी को मिलती है। इसलिए हमारा जीवन जो है सर्वश्रेष्ठ जीवन है। चाहे वो काले रंग का शरीर हो, गरीब शरीर हो, या अनपढ़ शरीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जो व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करेगा वो इसी काले कलूटे शरीर में होते हुए भी इस जीवन के अंत में भगवान को प्राप्त करेगा। इसलिए कंजूसी मत करो, भगवान का नाम लो, इसमें सबसे बड़ी धन दौलत छुपी हुई है। हम लोग धनतेरस मनाते हैं, लक्ष्मी पूजा मनाते हैं, सच्ची लक्ष्मी कौन सी है? भगवान के चरणों का आश्रय, यही सही लक्ष्मी है। क्योंकि लक्ष्मी स्वयं भगवान के चरणों का आश्रय लेकर बैठी हुई है, उन्हीं चरणों का आश्रय लेके उस स्त्री को लक्ष्मी पद प्राप्त हुआ है। एको ना बुझीनु प्रभु तुम्हारा चरण, तुम्हारा चरण क्या हो? एको ना बुझीनु प्रभु तुम्हारा चरण, अशोक भयामृत पूर्व सर्वखान। वो कहते हैं इन चरणों का आश्रय लेके वो शंकर को शंकर का रूप धारण प्राप्त हो गया। ये चरणों के पूजन करने से लक्ष्मी लक्ष्मी बनी। सबको अपना अपना पोजीशन मिला है, पावर मिली है, इन चरणों से मिली है। तो जिस लक्ष्मी का पूजन हम करने वाले हैं, लक्ष्मी पूजन को, वो भी इनके चरणों का पूजन करके, उनके चरणों की सेवा करके लक्ष्मी बनी हुई है। और वो कहीं टिकती नहीं है, उसका नाम चंचला देवी है, अनस्टेबल। आज यहां तो कल वहां, कल वहां तो आज यहां, लेकिन एक जगह वो स्थिर है। वो कहां पर है? जहां पर नारायण, उसके स्वामी नारायण भगवान की सेवा होती है, वहां पर वो स्थिर रहती है, क्योंकि वही उसका परमानेंट रेजिडेंस है। आपने उसका रेजिडेंट लाके खड़ा किया तो वही रह जाती है। उसका रेजिडेंस कौन सा है? नारायण भगवान, उसके चरण कमल। ये बात समझने की बात है। हमको खाली लक्ष्मी चाहिए, रावण को कैसा, खाली सीता चाहिए थी, बस सीता का भोग लेना था। राम को हटाकर सीता का भोग लेने की इच्छा की, क्या हुआ? सकुल नष्ट हो गया, सब कुल के साथ विनाश हो गया उसका। ये हमारा फिलॉसफी है। आपको लक्ष्मी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नारायण का भजन करो। लक्ष्मी को सेपरेटली भजन करने की जरूरत नहीं है, नारायण के पीछे पीछे भाग के आएगी, वो आपके घर पे रहेगी। कोई दीवार पे चरण का सिक्का लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग बाजार से लेके आते ना, दो चरण के रंगोली लेके आते हैं, उसको दरवाजे पे एंट्री दिखाते हैं। कोई जरूरत नहीं करने की, नारायण भगवान की पूजा करो, भाग के आएगी तुम्हारे घर पे और तुम्हारे घर पे रहेगी। जब तक आपके हृदय में और घर में नारायण जी है, तुम्हारे घर पे रहेगी वो। नारायण का पूजन करने से उसकी पूजा पूरी हो जाती है, क्योंकि चरणों में बैठी हुई है उनके वो। जब चरणों में दीपक घुमाते हैं तो लक्ष्मी को भी दीपक घुमाया जाता है साथ में। ऐसा है वो सब रहस्य, जो सब ये ज्ञान जो है ना, केवल मनुष्य के जीवन में हमको मिलता है, कुत्ता बिल्ली के जीवन में नहीं मिलता है। इसलिए पूरा कपड़ा पहनो, अच्छी तरह से इंसान बन के रहो, और सब सुनो और समझो, और नंगा बन के मत घूमो, फिर वुड बन जाओगे वुड, हजारों साल जीते रहेंगे वुड बन के। हाँ, क्या लाभ है उस जिंदगी का? 3,000 साल, 4,000 साल जिंदगी है, वैल्यू क्या उसका? जीरो वैल्यू है। लेकिन 10 साल की भी जिंदगी मिलेगी मनुष्य की, भगवान के धाम तक पहुंचाएगी आपको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबको मैं विनती करता हूँ, सब लोगों के लिए मेरी विनती यही है कि आप भगवान का नाम लो, भगवान को दीपक अर्पण करो, आपकी दिवाली सफल करो,
और इस दीपावली को सफल करने के लिए आप सबके लिए मेरी प्रार्थना है, शुभकामनाएं हैं कि भगवान आप पर कृपा करें, भगवान दामोदर आप पर अपनी कृपा वर्षाएं और अपनी भक्ति और प्रेमा भक्ति आपको दे दें और आपका जीवन सफल करें। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरी बोल।